नागानाय सुखीयभूषिताय गौरीशताय गणनाथ नमो नमस्ते। निमित्त भेद से सुख दुख दो प्रकार का है। सुख दुख जड़े दो प्रकार दे और उन दोनों के अभासवाद में उदासीनता रहती है, इस वार्ता को अब कहते हैं। बाही भोगान मनोराज्यात सुख दुखे द्विधा मति। सुख दुखांतरालेषु भोग्ये भवेत तुष्णीमावस्थितिः। बाह्य भोगात बाहर भोग रूप निमित्त से, मनोराज्यात और मनोराज्य रूप निमित्त से सुख दुखे, सुख और दुख द्विधा मते। सुख और दुख दो प्रकार दे हैं, केड़े केड़े? एक तो हो गया बाह्य भोग, बाहर ले सुख दुख, ए तो मैनु सुख मिलिया, ए तो मैनु दुख मिलिया, ये बाहर ले हो गए। इन्हें मैंने सुख दिता, इन्हें मैंने दुख दिता, ये बाहर ले होगी। मनोराज्य कितने मेरा एवं ना हो जाए, कितने मेरा एवं ना हो जाए, मैं एवं हो जाए ना तो एवं में सुखी हो जा। ये अंदर ले होगी,
ठीक
है। जेड़ा ऐसे है अंदर वाला उन्होंने कहते मनोराज्य। मनोराज्य मन दड़ाते रहना ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੀ ਕਣ ਜੀਰੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰਲਾ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। सुख दुखे, सुख और दुख द्विधा मते दो प्रकार के सम्मत हैं। सुख दुखांतरालेषु सुख दुख के मध्यवर्ती अवकाश में, अर्थात जिस समय सांसारिक सुख दुख विद्यमान नहीं है उस समय तुष्णिम अवस्थिति भवेत, उदासीन अवस्था होती है। जदों ना सुख है ना दुख है, कोई वृत्ति नहीं उठी, उदो केड़ी वृत्ति होगी? उदासीन। किसी ना राग नहीं, किसी ना देश नहीं, बस जिस प्रयोजन के लिए जागृत आदि का कथन किया उस प्रयोजन को अब दिखाते हैं। ना काया ना कापी चित्त में त्वदया सुख मास इति ब्रुवन उदासीन में निजानंद भानम वक्त्याखिलो जनाः। अखिल जनाः, अखिल मैंने सभी, हाँ अखिल सभी भारती, अखिल मैंने जना, अखिल जना सब मनुष्य अद्य में अब मेरी का अपि चिंता, कोई भी गृह आदि विषय की चिंता ना अस्ती नहीं है। हुण मैनु कोई घर बार की चिंता नहीं, मेरे बाल बच्चे ब्याए गए, आ जिहड़ी जमीन बयाना दिता सी रजिस्ट्री हो गई, बच्चे ब्याए गए, आप हूं फ्री हाँ जी, हाँ ऐसा कह देंगे ना ना नहीं, इसलिए सुख वास्ते सुख में सुख से मैं स्थित हूं, क्योंकि हूं मैं कोई चिंता नहीं। बच्चे ब्याए गए, लड़की सी एक ओदी शादी हो गई, वो भी अपने घर सुखी है, उसको भी काका, लड़का है उसको भी काका, चिंता ही कोई नहीं, मैं ठीक हूं सुखी हूं। ये बाहरला सुख हो गया। इति ब्रुवन इस प्रकार कहता हुआ उदासीन ने उदासीन अवस्था में निजानंद भानम स्वरूप आनंद के स्फुर्ण को व्यक्ति कहते हैं। ये जेड़ा वो आनंद है ना, वो विषय तो आनंद नहीं है, विषय तो पूरे हो गए,
संतुष्टि
संतुष्टि वो अपना स्वरूप संतुष्टि ही है। विशेष आनंद आएगा तो विशा कोई मिल गया, जी चीज चाहिए सी मिल गई तो आनंद आ गया, इतने तो पूर्ण हो गया,
अपना स्वरूप पूर्ण है, पूर्ण
अपना स्वरूप पहले ही पूर्ण है,
ताही
आनंद स्वरूप है। उदासीन हो गया, आप कुछ नहीं लैना, छोड़ो फिर जो कुछ नहीं लैना तो बिरती नहीं बनी तो सुख होया,
आनंदमय हो,
बिरती उठी नहीं। इसलिए जागरण अवस्था में भी निजानंद का भान होता है, यह जानना चाहिए। ऐ जेड़ा सुख है ना, ये निजानंद में निज मने अपने स्वरूप का आनंद है। उदासीन अवस्था में भासमान आनंद यदि निजानंद रूप है तो वह आनंद ब्रह्म आनंद रूप होने से वह वासना आनंद रूप नहीं होगा। ऐसी शंका का समाधान कहते हैं कि सामान्य अहंकार से आवृत होने के कारण वह ब्रह्मानंद रूप नहीं किंतु वासनानंद रूप है। ब्रह्मानंद नहीं हो तो ब्रह्मानंद तो भान ही नहीं होया, तो केड़ा हो गया वासनानंद। वासना मैंने
वासना पूर्ण हो चुकी है,
वासना पूर्ण हो चुकी है नहीं, वो नहीं। जैसे दृष्टांत दिता सी तुसी आप ही किसी के घर बासमती के चावल बनते हो, कोई कोई पकवान पकते हो तो खुशबू आउंदी वासना आउंदी है, ते आपां ओ वासना आपां वासना नूं लै करके उत्थे पहुंच जांदे, इत्थों आ रही है वासना, कित्थों आ रही फिर खोजदे आपां, इधरों अशा करों आ रही वासना, जिथों वासना आ रही उत्थे पहुंच गए कि नहीं। ये जिहड़ा सुख है ना जदों कहिंदा वी मेरे बाल बच्चे जाएगे सारा मैं हुण वेला, वो वासना आनंद अपने स्वरूप का आनंद आ रहा, वासना है तो वासना नु लै करके थोड़ा अवस्थित हो जाए तो फिर घर च पहुंचा दो जिथों वासना आ रही है,
संतुष्टि होगी बस उन्हें आनंद आ रहा।
हाँ संतुष्टि का आनंद है, वासना आनंद है, जे वो होर थोड़ा एकाग्र हो जाए तो फिर जिथों आनंद आ रहा वो आनंद वासना नु उत्थे पहुंचा दे। हम अस्मिति हंकारा सामान्यात् शादी तत्वतः निजानंदो न मुख्योयम् किम त्वसौ तस्य वासना। हम अस्मि इति मैं हूँ इस प्रकार, मैं हूँ इस प्रकार अहंकार सामान्य अशादित्वतः सामान्य अहंकार से आवृत होने के कारण अयम निजानंदः जह निजानंद मुख्य ना मुख नहीं है। ये जरा उन्हें आ रही है ना आनंद आ रहा है, वो अपना स्वरूप का मुख आनंद नहीं है, वो जो आ रही है वासना, किंतु असो परंतु वह निजानंद तस्य वासना ब्रह्मानंद की वासना है, अर्थात ब्रह्मानंद से जन्य संस्कार लेशा रूप वासना है। संतुष्ट हो जाने चल कोई नी हुण किहड़ा बहुत कुछ आ परमात्मा दा दिता, सप मारता खजाना दे थले दबिया रह गया। मान लो कई किसी नूं पता लग गया भी मेरे इत्थे खजाना घर च, पर उहदे ते इक फनीअर नाग बैठा है तो उन्हूं मारना पऊगा तो फिर खजाना प्राप्त होगा। नाग नूं भी मार दिता बस हुण ते चिंता ही नहीं होती, अपना ही हाँ पुटिया नहीं अजे, वो जिहड़ा आनंद है ना उन्हूं कहिंदे वासना आनंद, वो खजाने की वासना आ रही है उहदा आनंद है, अजे वो खजाना पुट के वरत्या नहीं। हाँ किंतु असो परंतु वह निजानंद तस्य वासना ब्रह्मानंद की वासना है, अर्थात ब्रह्मानंद से जन्य संस्कार लेश रूप वासना है। मैं देवदत्त हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ इत्यादि अहंकार को विशेष अहंकार कहते हैं, और इससे भिन्न केवल अहम अहम इस प्रकार के अहंकार को सामान्य अहंकार कहते हैं। अहंकार दो प्रकार का है ना, एक तो हो गया मैं ब्राह्मण हूँ, मैं देवदत्त हूँ, मैं जई हूँ, मैं प्रधान हूँ, मैं राजू हूँ, मैं काला हूँ, जो भी ये तो हो गया केड़ा विशेष। मैं फिर उहदे नाल जाति भी जोड़ देनी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं जट हूँ, मैं खटड़ा हूँ, ये भी नाल जोड़ देना, ये विशेष हो गया। तो जेड़ा कह देना की कह देना खाली अहम अहम मैं वो सामान्य अहंकार हो मैं कितने ब्रह्म लग जाए, मैं ब्रह्म
हूं
मनुख मुख्य आनंद से अतिरिक्त वासना आनंद है, इसमें दृष्टांत कहते हैं। अब दृष्टान दस रहे नीर पूरित भांडस्य बाह्यो शैत्यम न तत् जलम किंतु नीर गुणस्तेन नीर सत्ता अनुमीयते। नीर सत्ता अनुमीयते, अनुमीयते माने अनुमान से। देखो की कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नीर पूरित भांडस्य, जल से पूर्ण घट के एक घड़ा है, जल का भरिया पिया है ठंडा जल, भांडे माने भांडा, घड़ा ले लो चाहे और कोई ले लो। नीर पूरत पूरित भांडस्य, जल से पूर्ण घट है बाह्य बाहर देश में अर्थात बाहर के बाह को स्पर्श करने से शैत्यम अनुभव में आने वाली शीतलता है। तत् जलम ना, वह शीतलता जल नहीं है किंतु नीर गुण, परंतु जल का गुण है। तेना नीर सत्ता अनुमीयते, उस गुण से घट में जल की विद्यमानता का अनुमान जानिया ज्ञान होता है। कि यह कड़ा जल का भरिया पिया है, ठंडा जल है, घड़े नु हाथ लाया हाथ ठंडा हो गया, कहिंदे बड़ा ओ जिहड़ा हाथ लाउण दे नाल की जल नु हाथ नहीं लगा, ते जल दे विच जिहड़ा गुण है केड़ा शीतलता, ओ प्रगट होया हाथ लाउण दे नाल, गुण तो अनुमान ला लिया आपां कि ठंडा जल है। उस तो पता लग गया, अनुमान ला लिया की ला लिया, इहदे विच ठंडा जल है। अब हुण इस नु दृष्टांत देख, ये तो दृष्टांत हो गया, अब दृष्टांत घटाउणगे विच। अब प्रकृति में दृष्टांत को घटाते हैं। जावद्यावद हंकारो विस्मृतो व्यास योगतः तावद्वत् सूक्ष्म दृष्टिर निजानंदे अनुमीयते। अभ्यास योगात श्रुति उक्ति निरोध समाधि से, श्रुति उक्त निरोध समाधि के अभ्यास से जावा तावत जहाँ तक जितना जितना अहंकार विस्मृत अहम आदि वृत्तियों का विस्मरण अर्थात विलय होता है, विस्मरण मैंने भूल जाता, तावत तावत सूक्ष्म दृष्टि उतना ही उतना चित्त की सूक्ष्मता उत्पन्न होने पर निजानंदा निजानंद का आविर्भाव होता है। इस प्रकार अनुमीयते अनुमान प्रमाण द्वारा ज्ञात हो सकता है। प्रगट की कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जड़ा सुरति युक्ति से, सुरति से दस्या है निरोध समाधि, निरोध समाधि माने मन नु रोकन वाली, जोगा चित वृत्ति निरोधा, जड़ा चित वृत्तियों का निरोध करना वो जड़ी समाधि है, वो की कर दी है बार बार जेडी बिरती जांदी, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं जट हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, वो बिरती नूं बार बार रोकिया ते की होया, शरीर दी स्मृति भुल गई की होया, जितनी जितनी शरीर दी स्मृति भुलदी जाएगी उतना उतना उधर नूं आनंद बढ़दा जाएगा, जितना जितना घड़े नूं ज्यादा हाथ लाउंदे जाओगे, जेड़ा जेड़ा हाथ जितना जितना भाग अपना शरीर का ज्यादा टच करते जाओगे उतना उतना शरीर ज्यादा ठंडा होता जाएगा, जितना जितना शरीर नूं भुलते जाओगे उन्ना उन्ना उधर आत्म निजानंद का आनंद ज्यादा बढ़ता जाएगा। उस तो अनुमान की होंदा कि आत्मा आनंद रूप है, ठीक है। बुद्धि की सूक्ष्मता की अवधि साक्षात्कार है, इस बात को कहते हैं। सर्व आत्मा विस्मृत सन सूक्ष्म सूक्ष्मताम परमाम ब्रजेत अलीनत्वाना निर्निंद्रायशा ततो देहोपि नो पतेत। सर्वात्मना संपूर्ण रूप से विस्मृता मना विस्मृता सन अहंकार का विस्मरण अर्थात सर्व वृत्तियों का विलय होने पर सारिया वृत्तियां जिन्नियां उठ रही, कोई वृत्ति उठी नहीं, सारिया लीन हो गई मनोवृत्तियां। परमाम सूक्ष्मतम चित्त की निर्दिशे सूक्ष्मता ब्रजेत हो जाती है, फिर चित्त की हो जाएगा शांत हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा, अर्थात चित्त अत्यंत सूक्ष्मता प्राप्त करता है। अलीनत्वात सर्व वृत्तियों का विलय होने पर भी अंतःकरण का लय ना होने से ईशा निंद्रा ना जह निंद्रा अर्थात सुषुप्ति अवस्था नहीं है ते निंद्रा किनू कहोगे जो अंतःकरण लय हो जाएगा बिरतियां दा लय हो जाए वो निंद्रा नहीं है बिरतियां दा लय हो जाएगा तो अंतःकरण लय नहीं होया तो उन्हें की कहोगे समाधि ते जो बिरतियां दा लय हो गया ना अंतःकरण दा भी लय हो गया फिर निंद्रा ये अंतर है निंद्रा विच और समाधि च देखना की कह रहे हैं अलीनत्वाद सर्व वृत्तियों का विलय होने पर भी अंतःकरण का लय ना होने से ऐसा निंद्रा ना जह निंद्रा अर्थात सुषुप्ति अवस्था नहीं है तथा देह अपि उसी कारण से शरीर भी नो पतेत नहीं गिरता इस वास्ते जो समाधि क्यों बैठा है वो बैठा रहेगा डिगेगा नहीं क्योंकि वो निंद्रा नहीं ना निंद्रा आ जाएगी तो एवं झूठा लगेगा पिछे एवं हो जाता जो निंद्रा आएगी तो निंद्रा नहीं है तो ऐसे बैठा है फिर दिखेगा नहीं
निंद्रा तो राय तो ठीक है थोड़ा नींद मंगू है कि वो
हाँ जी
नींद
अपने आप का ज्ञान तो फिर भी रहूंगा
ना ना निंद्रा मंगू ता होता ना जो नींद हो तो निंद्रा मंगू तो ता होता हूं तुझे इदा अखा मीट के बैठ जाओगे तो की निंद्रा है निंद्रा तो नहीं जागृत है पर मन जरा संकल्प विकल्प कर रहा है तो मन के संकल्प विकल्प जो बंद हो जाएंगे निंद्रा ना होगी वो समाधि है शरीर के ना गिरने से जह निश्चय होता है कि वृत्तियों की विलय अवस्था निंद्रा अवस्था नहीं है शरीर जो ना गिरे एवं ना होवे झूठे ना लगन ऐसे तो वो शरीर गिरदा नहीं है वो की होया वो निंद्रा नहीं है समाधि है हाँ। और चित्त दी वृत्तियां शांत है ना द्वैतम वास्ते ना भी निंद्रा तत्र अस्ति जत सुखम सा ब्रह्मानंद इत्याह भगवान अर्जुनम प्रति कह रहे हैं ना द्वैतम वास्ते द्वैत ना वास्ते जिस काल में द्वैत नहीं वास्ता जिहड़े टाइम दे विच बंदा अखां मीट के चिंतन कर रहा है मन नूं रोक रहा है ते जिहदे वो टाइम आ गया जिहदे विच द्वैत नहीं वास्ते ओ निंद्रा अपि ना निंद्रा भी नहीं आती तत्र जत सुखम अस्ति उस काल में प्रतीय मान जो सुख है सा ब्रह्मानंद वह वही ब्रह्मानंद है इति अर्जुन प्रति इस प्रकार अर्जुन के प्रति भगवान आहा भगवान ने कहा है ये गीता का उदाहरण दे दिता मैं ये जरा जेड़े काल में द्वैत ना बसे द्वैत कदों बसेगा जो मन की बिरती द्वैत वाल जाएगी मन उन्हें शांत करता मन की बिरती उठ नहीं रही नींद आई नहीं तो किड़ा आनंद हो गया ब्रह्मानंद अर्जुन के प्रति भगवान कृष्ण यही कहते हैं जिस जिस श्लोक में भगवान ने जह उपदेश किया उन श्लोकों का अर्थ कर्म के अनुसार पाठ करते हैं शनि शहि रूप में तद बुद्धि धृत्या गृहतया आत्म संस्थान मना कृत्वा ना किंचदपि चिंतित ना किंचदपि चिंतित किंच थोड़ा सा भी चिंतन ना करो इधर उधर का बैठे कहते वास्ते जे मन रोकने वास्ते संसार तो मन नु हटाने वास्ते चिंतन संसार का ही हो रहा बैठे तो आप ऐसे अखा मीट के बैठे हाँ कि अपना मन जिहड़ा है ओदियां बिरतियां जिहड़ियां वो संसार दे विच विचरण कर रही उन्होंने रोकना उतो हटाना तो जो बैठे हैं तो मन संसार दे विच विचरण कर रहा है उन्होंने की कहोंगे भक्त समाधि बैठ रही हो भक्त ध्यान लगाए रात फिर लिया सात समुद्र लोक गयो पर लोक गवाए
लोक भी गया पर लोक भी गए
उन्होंने क्या भक्त समाधि कि आप बैठे गए तो चिंतन हो रहा संसार का और मैं उठे चल जाता ना हूं इतने चलो हम आप थोड़ा घंटा ला के फिर जाने वो है गड़बड़ वाली समाधि अब भगवान कह रहे हैं धृति गृहित्वा बुद्धिया धैर्य युक्त बुद्धि से शने शने मैंने धीरे 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 धैर्य युक्त बुद्धि से आज बैठे हैं हूं ही समाधि लग जाए ऐसा नहीं एडी जल्दी नहीं होंगे हौसले के नाल धैर्य युक्त बुद्धि से शने शने धीरे धीरे कर्म से एक दम नहीं हौली हौली भाई पौड़ी चढ़ देते एक डंडे दे पैर रख के थे अठवें से चल जाओगे कर्म से नंबर से जाओगे तो ठीक रहोगे उधर जा भी नहीं सकते आप पहले डंडे पैर रखा थे अठवें से रख के दिखाओ
तो
बारी हाँ तो बस यही कर्म है ना बारी बारी से ही आऊगा कम धीरे धीरे कर्म से एकदम नहीं उपरमेत मन का निरोध करना चाहिए मनहा आत्म संस्थम कृत्वा मन को आत्मा में सम्यक स्थापित करके किंचदपि कुछ भी अनात्म वस्तु का ना चिंतित नहीं चिंतन करना चाहिए यही योग का परम अवधि है ए योग दी परम अवधि माने सीमा अनात्म वस्तु का चिंतन अगर उतो तो डर करके उन्हों तो हटाने वास्ते बैठे हैं तो फिर उदा ही चिंतन हो रहा तो फायदा की है इस योग के संपादन के लिए प्रवृत्त हुआ अधिकारी आरंभ में क्या साधन करे ऐसी शंका का उत्तर कहते हैं फिर दस दे ना जिथे जिथे मन जाता उन्हों उतो तो हटाओ देखो जतो जतो निश्चरती मनस चलती माथिरम ततस ततो निजमेत दात्मनेव वशमनेत चंचलम स्वभाव दोष से चंचल मन है ना चपल और चंचल स्वभाव दोष से चंचल अस्थिरम मनः इसलिए अस्थिर किसी एक विषय में नहीं ठहरने वाला मन जता जता जिस जिस शब्द आदि विषय रूप निमित्त से निश्चरती निकल कर भागता है तथा तथा तिस तिस शब्द आदि विषयों से नियम मन को निरोध करे जेड़े जेड़े विषय नु लैके चिंतन कर रहा उन्हों हटाए छड़ मना केड़ा काम कर लिया उन्हों बार बार उन्हों हटाउंदे रहो अर्थात शब्द आदि विषयों के मिथ्यापणे का चिंतन करके वैराग भाव द्वारा मन का निरोध करे जो चिंतन कर लगे ये मिथ्या है इन्हों का चिंतन कर रहे ये तो होना है घड़ी नहीं है मिथ्या, मिथ्या। ऐसे कर करके तू रोके ये तद आत्मनि एव इस मन को आत्मा में ही वशमनेत वश करे अर्थात आत्मा के चिंतन में ही लगावे बार बार संसार का चिंतन कर रहा है ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਇੰਨਾ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਤ ਕਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਚਿੰਤਨ ਚ ਫਿਰ ਲਗਾ ਦੇ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਕਰ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਅਨਾਤਮਾ ਕਰ ਨਿਰਧਿਆਸਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨਾਤਮਾ ਕਰ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਤਮਾ ਕਰ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਾ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਮੇ ਹੀ ਲਗਾਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ अभ्यास करने पर मन आत्मा में ही उपशम प्राप्त होता है मन आत्मा में ही शांत हो जाएगा मन शांत होने पर क्या प्रयोजन सिद्ध होता है इसका उत्तर कहते हैं अंदर जो चलो मान लो मन शांत हो गया तो की मिलेगा हाँ वो दसन लगे प्रशांत मनसम हीनम जोगी नम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूत म कलमशम शांत रजसम क्षीण हो गया है मोह आदि क्लेश रूप मिलना जिसमें से मलिनता जिसमें से मलिनता मैंने रजोगुण क्षीण हो गई है गया है मोह आदि क्लेश रूप मलिनता जिसमें देखो मन इस मन नु मल लगी काला है सवा मलिनता मल केड़ी लगी मन नु मोह आदि क्लेश ए, ए, है मोह तो बाकी ले लेना मोह आदि पंच क्लेश का ना ना काम क्रोध मोह लोभ अहंकार नहीं पंच क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये इन्हां च सारे ही आ जाएंगे इदां तो तुसी पंच गिनोगे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार तो बाकी आ कहोगे पंच क्लेश इन्हां च तो कोई बचा ही नहीं सारा ही आ गया ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਉਦਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅਸਲੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹ ਆ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਲੇਸ਼ ਪੰਜ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਅਵਿਦਿਆ ਅਸਮਿਤਾ ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼ ਅਭਿਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗਿਣ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲੀਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਨਸਮ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਨ ਜਿਸਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਭੂਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਕਲਮਸ਼ਮ ਤਥਾ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਏਵਮ ਯੋਗੀਨਮ ਹੀ ਐਸੇ ਯੋਗੀ ਕੋ ਹੀ ਉੱਤਮ ਸੁਖਮ ਨਿਤ ਨਿਰਤਿਸ਼ ਸੁਖ ਉਪੈਤੀ ਸਵਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਗਾ ਉਹਨੂੰ ਯੋਗੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਯੋਗੀ ਸੰਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੀ ਸੰਤਾ ਅਬ ਆਗੇ ਚਲੋ ਜਤਰੋ ਪਰਮ ਤੇ ਚਿੱਤਮ ਨਿਰੁਦਮ ਯੋਗ ਸੇਵਿਆ ਜਤਰ ਚੈਵ ਆਤਮਾ ਅਨਾਤਮਾਨਮ ਪਛਨੀ ਨਾਤਮਨੀ ਤੁਸ਼ਯਤੀ ਚਿੱਤਮ ਜਤਰ ਮਨ ਜਿਸ ਕਾਲ ਮੇਂ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਆ ਨਿਰੁਦਮ ਯੋਗਾਨੁਸ਼ਠਾਨ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਓ ਸੇ ਨਿਰੋਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਅਰਥਾਤ ਨਿਵਿਰਤ ਹੁਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਆ ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਆਪ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਤੈ ਧੋ ਰਹੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇਲ ਵੀ ਮਲ ਰਹੇ ਜੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋ ਜੋ ਕਹੇ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਓ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਭਜ ਸੇਵਾਯਾਮ ਭਜਨ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਦੂਜਾ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਨਾਲ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਜਨ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸੇਵਾ ਭਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟੋਕਰੀ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਕਰਨੀ ਉਪਰਮ ਤੇ ਉਪਸ਼ਮ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਾ ਜਤਰ ਆਤਮਨਾ ਔਰ ਜਿਸ ਕਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਾਕਰਣ ਮੈਂ ਆਤਮਾਨਮ ਸਵੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਕਾ ਪਸ਼ਚਨ ਅਨੁਭਵ ਕਰਤਾ ਹੁਆ ਜੈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਤਮਨੀ ਏਵ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਸ਼ਯਤੀ ਪਰਮ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਹੈ ਸੁਖਮ ਅਤਿਅੰਤਕਮ ਜਦ ਬੁੱਧੀ ਗ੍ਰਹਿਤੇ ਮਿੰਦਰੀਅਮ ਵੇਤੀ ਯਤਰ ਨਾ ਚੈਵਮ ਸਥਿਤ ਚਲਤੀ ਤੱਤਵਤਾ ਸਥਿਤ ਚਲਤੀ ਤੱਤਵਤਾ ਜਤਰ ਔਰ ਜਿਸ ਕਾਲ ਮੇਂ ਆਤਮਨਿਸ਼ਠ ਯੋਗੀ ਅਤਿਅੰਤਿਕਮ ਬੁੱਧੀ ਗ੍ਰਹਿਤਵਮ ਕੇਵਲ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਸੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਅਤਿੰਦਰੀਅਮ ਜਤ ਸੁਖਮ ਬਾਹਯ ਇੰਦਰੀਓ ਕਾ ਅਵਿਸ਼ੇ ਜੋ ਸੁਖ ਹੈ ਦੇਖ ਲੋ ਬਾਹਯ ਇੰਦਰੀਓ ਕਾ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੁਖ ਹੋਏਗਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਸੁਖ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਆਇਆ ਕਿਹੜੀ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਸਨਾ ਆਨੰਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਚੋਰ ਪੈਰ ਤੋਂ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਆਹ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਬਈ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਆਹ ਹੀ ਚੋਰ ਬਈ ਐਸੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਭੰਡਾਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ ਉਹ ਪੈਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਇੰਦਰੀਓ ਕਾ ਅਵਿਸ਼ੇ ਜੋ ਸੁਖ ਹੈ ਤਤ ਵੇਤੀ ਉਸ ਸੁਖ ਕੋ ਅਨੁਭਵ ਕਰਤਾ ਹੈ ਚਾ ਸਥਿਤਾ ਔਰ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਸਥਿਤ ਹੁਆ अयम तत्वतः वह जोगी उस आत्म स्वरूप में ना एव चलती कदापि ना ही चलायमान होता। फिर ओ निकलता ही नहीं, फिर क्यों निकलूगा? फिर आनंद सागर च गोते ला रहा हो तो वह क्यों दुख च आऊगा? फिर भाई इतने कमरे च है वा टेंपरेचर 20-25 डिग्री, अब बाहर हैगा वा -7 डिग्री, वो बाहर बैठना चाहोगे कमरे च? वो कमरे च बैठा तो उन्हें कहोगे जा बाहर निकल, तो निकलूगा? उन्हें सुख मिल रहा हो कि निकलूगा? यही हाल आत्मा, जेड़ा आत्मा का सुख ला रहा वो संसार ही सुख, कितने संसार वो क्यों निकलूगा? चलो जम लब्ध च परम लाभम मने तै ना दिक्कम ततः जानम जस्मिन स्थितो न दुखे न गुरु नापि विचाले। गुरु नापि, असली गुरु दा अर्थ की हुंदा? गुरु है ना, गुरु नापि, गुरु मने दा भारी, उतो शब्द बनता गुरु, गुरु मने बहुत भारी वस्तु है ना, गुरु बहुत गुरु आ, तो उस तो बनता गुरु बड़ा वड्डा जड़ा होवे गुरु। जम लब्धवा और जिस आत्म तत्व की प्राप्त होकर अपरम लाभम दूसरे किसी भी लाभ को तथा अधिकम ना मन्यते, उससे अधिक नहीं मानता, जस्मिन स्थिता तथा जिस आत्म तत्व में स्थित होकर योगी गुरुणा दुखे ना अपि महान दुख से, देख लो गुरु दा की करता महान दुख से भी ना विचालित चलायमान नहीं होता। जो समाधि च बैठा है ते फिर महान दुख से चलायमान नहीं हुंदा, क्यों नहीं हुंदा? केहो जा दुख आऊगा? गुरु अर्जन देव जी जैसा लोग ते बैठे है चलायमान हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? आ स्थिति सी है, समाधि लगी ही ला, कर दे रहे जो करना ला लो जो अपना, वो उ है ही नहीं जिन्हों तुम देख दुख देना चाह रहे थे, वो बंदा ही नहीं उठे की करोगे? अज तो वाला दुख कह गुरु ना भी बेचारे ऐसे दुख से फिर चलाया मान नहीं होंगे। अब उपादित जो का निमागन करते हैं, तम विद्या दुख संजोगा विजोगम जोग संगीतम निश्चय न युक्तव्यो जोग निर्वाण चेत था, तम दुख संजोग विजोग, उस पूर्वोक्त दुख के संबंध के वियोग से दुख अभाव को जोग संगीतम विद्यात जोग नाम वाला जानना चाहिए, सा जोग वह पूर्वोक्त जोग निश्चय न निश्चय के साथ अने अनिर विनिश चेत सा खेद रहित चित्त से योगतव्य अनुष्ठान करने योग है। खेद रहित ये ना हो लू तो 6 महीने हो गए अजे तक तो समाधि लगी नहीं, हूं नहीं लगनी, मतलब 6 महीने की गल नहीं कुछ करो, एवं कुसा है ना कुसा दब दब लई एक तीला लिया उस समुद्र च डोबता ओदा एक बूंद किन्नी उन्हूं पानी लगेगा? एक बूंद एवं बाहर देखती, ऐसे करके मैं समुद्र नु सका देना, इना हौसला चाहिए गल बनती है तो सागर बनूगा। आ छिड़े टोबे आ छप्पड़ है एकदम एक बारिश तो सारे बराबर पैंदी है, वो क्यों भर जाते हैं? वो कोई इधरों पानी आ गया नाली जी को उधरों आ गया उधरों आ गया उधरों आ गया तां भर दे, एकदम नहीं भरते, बारिश के बराबरी पैंदी है, उन्होंने को ग्रहण करने की शक्ति दी, नीचे है वो इस बात नीचा हो जाएगा जेड़ा चुक जाएगा जेड़ा जे चा आ जाएगा कि अहंकार निवृत्त हो जाएगा, उन्होंने फिर फल लग जाएंगे सिंबल नु लगते नहीं, पता नहीं क्यों नहीं लगते। जुंज ने आप यही है ना उपसंगार करते हैं, जुंजने सुद आत्मा नम जोगी विक्त कमल कलम शाह सुखे न भाई संस्पर्श मत्यंतम सुख मशनु ते विक्त कलम शाह निष्पाप अर्थात जो के विघ्न रहित जोगी सदा आत्मानम, जोगी सदा आत्मा का एवं जुंजन पूर्वोक्त प्रकार से अनुसंधान करता हुआ सुखेना भय संस्पर्शम अनायास ही ब्रह्म स्वरूप अत्यंत सुखम अश्नुते नित्य नृतिशय सुख प्राप्त करता है। अनर्वेद अर्थात खेद रहित होकर किया जाने वाला योगाभ्यास फल पर्यंत फल परवासावी होता है। इस वार्ता को दृष्टांत सहित कहते हैं। की कह रहे हैं? जेड़ा योगाभ्यास किया जाता किदा खेद रहित दुख नहीं मनना, इन्ना चिर हो गया जे बनी नहीं गल, ऐसे नहीं, उहदे चो फल मिलता है। कह रहे हुण दृष्टांत देण लगे आ ਕਿਹੜਾ ਉਤਸੇਕਾ ਉਦ ਉਦ ਦੇਰ ਜਦ ਵੱਧ ਕੁਛ ਕੁਸ਼ਾਗਰੇ ਨੈਕ ਬਿੰਦੂ ਨਾ ਮਨਸੂ ਨਿਗ੍ਰਹ ਸਤ ਵੱਧ ਵੇਦ ਪਰਿਖੇਦਤਾ। ਕੁਸ਼ਾਗਰੇ ਕੁਸ਼ਾ ਮਣੇ ਦਬ, ਕੁਸ਼ਾਗਰੇ ਕੁਸ਼ਾ ਦੇ ਅਗਰ ਭਾਗ, ਕੁਸ਼ਾ ਕੇ ਅਗਰ ਭਾਗ ਮੇ ਉਠਾਈ ਹੋਈ ਏਕ ਬਿੰਦੂ ਨਾ ਏਕ ਏਕ ਬਿੰਦੂ ਕਰਕੇ ਕੀਆ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਉਦ ਦੇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਕਾ ਉਤਸੇਕਾ ਜਲ ਬਾਹਰ ਫੈਂਕ ਕਰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜਦ ਵੱਧ ਖੇਦ ਨਾ ਹੋਣੇ ਪਰ ਜੈਸੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਦ ਵੱਧ ਮਨਸਾ ਨਿਗ੍ਰਹ ਉਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਕਾ ਨਿਗ੍ਰਹ ਵੀ ਅਪਰਿਖੇਦਤ ਖੇਦ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕਰ ਕੀਆ ਜਾਵੇ ਤੋ ਬਵੇਤ ਕਾਲਾਂਤਰ ਮੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟੈਮ ਪਾ ਕਰਕੇ, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਟਟੀਰੀ ਦੇ ਆਂਡੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਬਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛਾਲਾ ਆਈ ਜ਼ੋਰ ਚ ਆਂਡੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੂੰਦ ਚੁੰਝ ਚ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਚੁੰਝ ਚ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਆਇਆ, ਆਂਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ ਆ? ਆਂਦੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਆਂਡੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਆਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਸੁਕਾਉਣਾ ਸੁੱਕ ਜੂਗਾ ਇਹ? ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਕਰਨੇ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਆਏ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਤਨੇ ਸੀ ਉਧਰੋਂ, ਨਾਰਜੀ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣ ਡਏ। ਨਾਰਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਾਰਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾਰਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਗਰੁੜ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬਈ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਤੇ ਲੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੰਖ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਅੱਧਾ ਜਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਮਾਰਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੱਥ ਦੇਵਤਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਸੰਤਾਨ ਮਾਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਆਂਡੇ ਦੇ ਦੇ। ਆਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਭਰਾਵਾ, ਉਹਦੇ ਆਂਡੇ ਦੇ ਦੇ। ਆਉਂਦੇ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੜ ਅਵਸ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੁੜ ਅਵਸ਼ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ, ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗਰੁੜ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗਰੁੜ ਆਜੂਗਾ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਲੱਗੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੁੜ ਬਣ ਕੇ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਅਰਥ ਕੋ ਕੇਵਲ ਗੀਤਾ ਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿੰਤੂ ਇਸੀ ਅਰਥ ਕੋ ਮੈਤਰਾਯਣ ਸ਼ਾਖਾ ਮੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਕੋ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਹਦਰਥਸਯ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਖਾਯਨਯੋ ਮੁਨੀ ਸੁਖਮ ਪ੍ਰਾਹ ਮੈਤ੍ਰਾ ਸ਼ਾਖਾ ਮੈਤ੍ਰਾਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾਯਾਮ ਸਮਾਧੂ ਯੁਕਤੀ ਪੁਰਾਸਰਮ। ਮੈਤ੍ਰੀ ਮੈਤ੍ਰਾਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾਯਾਮ ਮੈਤ੍ਰੀ ਮੈਤ੍ਰਾਯਣੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਮਕ ਯਜੁਰਵੇਦ ਕੀ ਸ਼ਾਖਾ ਮੇ ਸ਼ਾਖਾਯਾਨਯ ਸ਼ਾਖਾਯਨ ਨਾਮ ਕਾ ਮੁਨੀ ਬ੍ਰਿਹਦਰਥਸਯ ਕਿਸੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬ੍ਰਿਹਦਰਥ ਨਾਮਕ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੇ ਸੁਖਮ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਕਾ ਸਮਾਧਿਤੁਮ ਸਮਾਧਿਯੁਕਤਮ ਪੁਰਾਸਰਮ ਸਮਾਧਿ ਕੇ ਕਥਨ ਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਆ ਥਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਆ ਉਸਕੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਕ ਉਸੀ ਸ਼ਾਖਾ ਕੇ ਮੰਤਰ ਕਾ ਪਾਠ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਅਬ ਉਸੀ ਮੰਤਰ ਕਾ ਪਾਠ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਰਕੇ, ਯਥਾ ਨਿਰੁਦਨ ਨਿਰੁਦ ਯਥਾ ਨਿਰੰਦੋ ਅਗਨੀ ਕੀ ਹੈ ਨਿਰਈਦਨ ਹੋ ਈਧਨ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਲੱਕੜੀ ਈਧਨ ਹਾਂ ਈਂਧਨ ਮੈਨੇ ਲੱਕੜੀ ਨਿਰਈਦਨ ਬੰਨੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਈਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓਗੀ ਤਾਂ ਭੱਖਦੀ ਰਹੂਗੀ ਲੱਕੜੀ ਸੁੱਟਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਜਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਊ ਯਥਾ ਨਿਰਈਦਨ ਹੋ ਬੰਨੀ ਸਵਾ ਸਵਾਯੋ ਨਾ ਉਪਸ਼ਮਯਤਿ ਤਥਾ ਬ੍ਰਿਤੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਛਾਯਾਂਤਸਚਮ ਸਵ ਨੂੰ ਉਪਸ਼ਮਯਤਿ ਨਿਰਧਨ ਕਾਠ ਕੇ ਕਾਠ ਕੋ ਜਲਾ ਕਰ ਈਧਨ ਰਹਿਤ ਬੰਨੀ ਸਵਯੋ ਨਾ ਅਗਨੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਤੇਜ ਮੇ ਯਥਾ ਉਪਸ਼ਮਯਤਿ ਜੈਸੇ ਉਪਸ਼ਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤਥਾ ਚਿੱਤਮ ਉਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਤਾਕਰਨ ਵੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਛਯਾਤ ਬ੍ਰਿਤੀ ਕੇ ਨਿਰੋਧ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਬ੍ਰਿਤੀ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਸੇ ਸਵਯੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਸੱਤਵ ਮਾਤਰ ਮੇ ਉਪਸ਼ਮਯਤਿ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸੱਤਵ ਮਾਤਰ ਰੂਪ ਮੇ ਅਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਰਹਿ ਜਾਤਾ ਹੈ ਅਬ ਉਸਕੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਅਗਨੀ ਹੈ ਅਗਨੀ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓਗੇ ਡੱਕਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਭਖਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜੀ ਸੁੱਟਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਫੁਰਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਫੁਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਡੱਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਫੁਰਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਡੱਕਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ ਸਵਾਨੁਭਾਸ਼ਾਂਤਸਯ ਮਨਸਾ ਸਤਯ ਕਾਮਿਨਃ ਇੰਦ੍ਰਿਯਾਰਥ ਵਿਮੂੜਸਯ ਨਿਰਤਃ ਕਰਮ ਸ਼ਾਨੁਗਾ ਸਤਯ ਕਾਮਿਨਃ
ਮਨ ਦਾ ਡੱਕਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜਣਾ ਹੋ ਗਈ
ਸੰਕਲਪ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਮਨ ਦੇ ਵਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਉੱਠਣਗੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਸਤੂ ਚਾਹੀਏ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਦੌੜੇਗਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਡੱਕਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਨੀ ਦਾ ਡੱਕਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਤਯ ਕਾਮਿਨ ਸਤ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਾਮਨਾ ਵਾਲੇ ਅਰਥਾਤ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ ਸਵਯੋਨ ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਸੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਾ ਕਾਰਨ ਸਤਵ ਮਾਤਰ ਮੇ ਉਪਸ਼ਮਤਸਯ ਉਪਸ਼ਾਂਤਸਯ ਉਪਸ਼ਮ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਇੰਦਰੀਆ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਮੂੜਸਯ ਔਰ ਉਪਸ਼ਮ ਕੇ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਆਦਿਓਂ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਮੁਖ ਅਰਥਾਤ ਵਿਸ਼ੇ ਗਿਆਨ ਰਹਿਤ ਮਨਸਾ ਕਰਮ ਵਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਕੰਮ ਮਨ ਕੇ ਕਰਮਾਧੀਨ ਸਹਿਤ ਸਾਧਨ ਸਹਿਤ ਸੁਖ ਦੁਖੀ ਮਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਸੇ ਮਿੱਥਿਆ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਮਿੱਥਿਆ ਮਿੱਥਿਆ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ
ਠੀਕ ਹੈ
ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਸੇ ਮਨ ਮਿੱਥਿਆ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਚਿੱਤ ਉਪਸ਼ਮ ਹੋਣੇ ਪਰ ਜਗਤ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜਹ ਵਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਕਾ ਉਪਾਦਾਨ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਾ ਉੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਮੇ ਪ੍ਰਥਮ ਅਰਧ ਸੇ ਕਹਿਤੇ ਹੋਏ ਆਤਮਾ ਕੀ ਮੁਕਤੀ ਕੇ ਲੀਏ ਆਤਮਾ ਕਾ ਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਚਿੱਤ ਕਾ ਐਸੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਾ ਵੀ ਸਮਾਧਾਨ ਉੱਤਰ ਅਰਧ ਸੇ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਚਿੱਤਮੇਵ ਹੀ ਸੰਸਾਰਸ ਤਤ ਪ੍ਰਯਤਨੇਨ ਸੋਧੇਤ ਜਤ ਚਿੱਤਸਯ ਮਨਯੋ ਮਰਤੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮੇ ਤਦ ਸਨਾਤਨਮ ਚਿੱਤਮ ਏਵ ਸੰਸਾਰ ਸਰੂਪ ਸੇ ਜਗਤ ਕਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਚਿੱਤ ਨਾ ਹੋਣੇ ਪਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੂਪ ਸੇ ਜਗਤ ਕਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਹੈ ਮਾਇਆ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਾਂ ਕਾਰਨ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਘੜੇ ਚ ਮਿੱਟੀ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਤੇ ਘੜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਾਇਆ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਨ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਡੇ ਹੁਣ ਸਰੂਪ ਸੇ ਜਗਤ ਕਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਚੇਤਨਾ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਵੀ ਜਗਤ ਕੇ ਭੌਤਿਕ ਭੋਗਿਤਵ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੱਤ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਚਿੱਤ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਚਿੱਤ, ਚਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਿੱਤ ਰੂਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਹੀ। ਔਰ ਜਹ ਵਾਰਤਾ ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ ਅਭਸਿੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ ਮੇਂ ਚਿੱਤ ਕਾ ਲੈ ਹੋਣੇ ਪਰ ਭੋਗ ਦੇਖਾ ਜਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲੈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਿਤਾਤਮਕ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੇ ਤਦ ਪ੍ਰਯਤਨੇ ਨਾ ਚਿੱਤ ਕੀ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਵੈਰਾਗ ਆਦਿ ਰੂਪ ਪ੍ਰਯਤਨ ਸੇ ਸ਼ੋਧੇਤ ਰਜਤਮ ਸੇ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਰਜਤਮ ਸੇ ਰਜੋਗੁਣ ਤਮੋ ਗੁਣ ਸੇ ਰਹਿਤ ਮੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਵਿਰਤ ਕਰਕੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਮਰਤਿਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅਰਥਾਤ ਦੇਹੀ ਜੀਵ ਜਤ ਚਿੱਤਸਿਆ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇ ਮੇ ਚਿੱਤ ਵਾਲਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤਨਮਯਾ ਵਹਿ ਤਦਾਤਮ ਅਭਿਮਾਨ ਕੇ ਕਾਰਨ ਤਿਸ ਤਿਸ ਪੁੱਤਰ ਆਦਿ ਸਰੂਪ ਅਰਥਾਤ ਤਦਾਤਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਦ ਸਨਾਤਨ ਗੁਹਿਅਮ ਜਹੀ ਅਨਾਸਿੱਧੀ ਦੇਖ ਲਓ ਰਹਿਸ ਹੈ। ਕੀ ਰਹਿਸ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘਰ ਰੂਪ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਦਾ ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਮਿਲਾ ਦੋਗੇ ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਸੇ ਹੀ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨੇ ਲਾ ਦੋਗੇ ਨਾ ਚਿੱਤ ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਸੇ? ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ? ਚਿੱਤ ਨੇ, ਚਿੱਤ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹਦੀ ਬਣੀ? ਚਿੱਤ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਹੋਏ? ਚਿੱਤ ਦੇ। ਅਬ ਕਿਧਰ ਚਲ ਗਿਆ? ਤਾਤਪਰ ਜੇ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਵ ਸੇ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਕਾ ਚਿੱਤ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਸੇ ਸਰਵ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਿੱਤ ਕੇ ਸ਼ੋਧਨ ਸੇ ਆਤਮਾ ਕਾ ਸੰਸਾਰ ਨਿਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵ ਸੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਕਾ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸੁਭਾਵ ਸੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਜਨਮ ਸੇ ਹੀ, ਜਨਮ ਸੇ ਮੈਨੇ ਆਦਿ ਅੰਤ ਰਹਿਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਵ ਸੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਕਾ ਚਿੱਤ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਸੇ ਸਰਵ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ, ਚਿੱਤ ਦਾ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟਿਆ, ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਨਾਦਿ ਜਨਮ ਪਰੰਪਰਾ ਦੁਆਰਾ ਉਪਾਰਜਿਤ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਦ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਕਰਮ ਜਬ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਹੈ ਤਬ ਤੱਕ ਚਿੱਤ ਕੇ ਸ਼ੋਧਨ ਸੇ ਵੀ ਕੈਸੇ ਆਤਮਾ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਸੇ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੋਗੀ। ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਕਾ ਪਰਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਤ ਕੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਸੇ ਉਪਲਕਸ਼ਿਤ ਬਾਹਿਆ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੇ सकल कर्म का क्षय होने पर संसार की निवृत्ति हो जाती है। ते निवृत्त कौन नहीं होंगे जेडे साडे कर्म है केड़े शुभ अशुभ चित्तस्य ही प्रसाद देना हंति कर्म शुभ अशुभम चित्तस्य ही प्रसाद देना चित्त के प्रसाद से कृपा से हंति नाश हो जाएंगे कर्म केड़े शुभ अशुभ। प्रसन्न आत्मा मनसी स्थित्वा सुखमक्षे मशनुति चित्तस्य प्रसाद देना चित्त के शोधन से अधिकारी मनुष्य शुभ शुभम कर्म धर्म अधर्म रूप कर्म का अंति ही क्षय करता है क्षय मने नाश। यह वार्ता सूरती स्मृति में प्रसिद्ध है। प्रसन्न आत्मा शोधित चित्त वाला अधिकारी आत्मनी अपना स्वरूप अद्वितीय सुख रूप ब्रह्म में स्थित्वा स्थिर होकर अर्थात अद्वय आनंद ब्रह्म रूप ही मैं हूँ ऐसा निश्चय द्वारा संपूर्ण दृश्य का परिहार करके चिन्ह मात्र रूप से अवस्थित होकर अक्षयम सुखम अविनाशी सुख स्वरूप को अनुसूते प्राप्त करता है। अविनाशी जिदा फिर जेडे सुख का कभी नाश ही नहीं होंगे ऐसे सुख नु प्राप्त करता है। अब प्रसन्न आत्मा स्थित्वा इस पूर्व श्लोक उक्त अर्थ को दृष्टांत कथन पूर्वक दृढ़ करते हैं। समास कृतम यथा चित्तम जंतुर विषय गोचरे यद्वेदम ब्राह्मणी स्यात तत्को न मुच्यते बंधनात् यंतो चित्तम प्राणियों का मनः जंतो जंतु की जीव जंतु है ना प्राणी सब प्राणी प्राणी किनू कहते जिन्हें जो प्राण संचार कर रहे हैं प्राण कहते प्राणी के सारे ही आ गए जंतु चित्तम प्राणियों का मन विषय गोचरे इंद्रियों के विषय शब्द आदियों में यथा समासक्त जैसे स्वभाव से ही अनुरक्त है तथा ब्राह्मणी यदि वह चित्त प्रत्येक अभिन्न परमात्मा में अगर एवं स्यात वैसे ही अनुरक्त हो तब कहा बंधनात् कौन मनुष्य संसार से नाम उचते नहीं मुक्त होगा। अंदाज जिदा ताडा जिहड़ा मन है संसार दे विच खुबिया पिया है इदा ताडा जिहड़ा मन है जेड़े जंतु का मन जेड़े जीव का मन परमात्मा में खुब गया उन बंधन कितों रह जाएंगे फिर होगा। उसी अर्थ का दृढ़ता के लिए मन का अवान्तर वेद कहते हैं मनो ही द्विधा प्रोक्तम शुद्धम चा शुद्धमेव चा अहा अशुद्धम काम संक संपर्कात शुद्धम काम वर्जितम। मन दे दो स्वरूप दस दिते की कह रहे अंदर जेड़ा मन है मनो ही द्विधम प्रोक्तम चित्त के दो स्वरूप कहा गया है शुद्धम अशुद्धम एक एवचा एक तो शुद्ध मन है और दूसरा अशुद्ध मन है। काम संपर्कात अशुद्धम काम क्रोध आदि दोष के संबंध से मन अशुद्ध काम वर्जितम शुद्धम और काम आदि दोष से रहित मन शुद्ध कहा जाता है। ताइयों तो कहते हैं पर ये मत पापा के संग वो जड़ा मत पापा के संग जड़ा संग दे नाल मन नु मैल लगी है तो किदा निकलेगी वो धोपे नामे के उथे साबण की जरूरत नहीं है ऐसी हो साबण घोल के पी ले बंदा मन शुद्ध हो जूगा। अब वेद की सुरती दस रहे हूं वेद की सुरती जो सुन लो अब द्विध मन का कर्म से संसार और मोक्ष के प्रति हेतुता दिखाते हैं आंदे मुक्ति होनी करनी है ना ते ताडे मन ने करनी जे जे तुहानू 84 दे चक्कर च पाउणा है ते ताडे मन ने पाउणा जे। वेद की सुरती केड़ी है मन एव मनुष्या नाम कारण बंधन मोक्ष यो बंधाया विषया सक्तम विमुक्तई निर्विषयम स्मृता। देखो मनुष्या नाम बंधन मोक्ष यो मनुष्यों के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण मन एव मन कारण मन ही है अंदा बंदे का जड़ा मन है वही मुक्ति का कारण है वही बंधन का। अब बंधन का कारण केड़ा मन है मुक्ति का कारण केड़ा मन है आ सुन लो। विषया शक्तम संसार के विषयों में अनुरक्त मन बंधाया बंधन के लिए अर्थात बंधन का कारण है निर्विषयम और संसार के विषयों का बंधन रहित शुद्ध मन मुक्ति स्मृतम मुक्ति का कारण कहा गया है। हम देख लो करना की मुक्त होना आगे के इदा ही चलना इदा तो चल ही रहा हां इदा तो चल ही रहा इदा तो चल ही रहा पता नहीं देख लो जी एक दो तीन चार चार।